ये प्रवचन साल नामक शास्त्र आचार्य कुंदकुंद देव ने 2000 वर्ष पहले बनाया, पर इसकी आपने तत्व प्रदीप का नाम की टीका उस शहर ये आरंभ होता है और उसका फिर हम सीन है कहां किसमें क्या है इसकी सब चर्चा इसकी पृष्ठभूमि में की है मंगलाचरण के बाद। उसके बाद अपन उसे पढ़ेंगे जिससे सारी ये बात हमारे ख्याल में आ जाएगी कि इसमें क्या है। ज्ञान गेयमय निज आत्म आराध्य है, जो अपना आत्मा जिसकी अपन को आराधना करना है वो आत्मा स्वयं ज्ञान भी है और गेय भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि दो पार्टी हैं, अब तुम दो में से एक कोई ले लो, एक किसी पार्टी में शामिल हो जाओ कि ज्ञान बन जाओ कि गेय बन जाओ, दोनों में कैसे रह सकते हो। किसी की शादी हो तो तुम लड़की वाले और लड़के वाले दोनों कैसे बन सकते हो, क्या लड़की वाले की तरफ हो जाओ जब लड़के वाले की तरफ हो जाओ। कोई भी दो पार्टी हो खेलने में कबड्डी में क्रिकेट में तो दो पार्टी में से एक में ही रह सकते हो ना। लेकिन ये भगवान आत्मा यहां ऐसा नहीं है, जानना भी उसे ही है और जानेगा भी वही, जानने वाला भी वही है और जानने में आने वाला भी वही है। तो ज्ञान गेयमय और उसकी दूसरी शर्त यह है कि वो निज होना चाहिए। अब तीन बातें हो गई, वो ही उसे ही जानना है, वो ही जानेगा और वो कोई पर नहीं होना चाहिए कि कोई भी आदमी, ऐसा नहीं, वो निज अपने आत्मा की बात होना चाहिए, है ना। ये बड़ी बड़ी शर्तें हैं जो हमारे पहले ही ख्याल में आ जाएंगी तो हमेशा हमें ये समझने में सुविधा रहेगी, क्योंकि हम चाहे जितनी और बड़ी बड़ी बातें करते रहें लेकिन अंत में ये निकले कि ये तो दूसरों की बातें हैं। जैसा कि होता है ना, ये तो अरहंत की बातें हैं और ये तो सिद्ध की बातें हैं, ये आचार्य की हैं, ये उपाध्याय की हैं, तो ऐसे वो किसी कोई ना कोई दूसरे की बात निकल जाती है। पर जैन दर्शन में दूसरे की स्तुति निश्चय स्तुति होती नहीं है, व्यवहार होती है, व्यवहार माने कहने की, उसे कुछ नहीं होने वाला है। आप कहते कैसे नहीं, पुण्य बंध तो होगा। अरे तो बंध को भी होना मानता है, जिसे काटना है और वो ही होगा तो तेरे विरुद्ध होगा ना, जो कुछ भी होगा बंधन में पड़ेगा ना। तू तो मुक्ति के मार्ग में चलने के लिए निकला है ना, तो पहली शर्त क्या है कि वो ही जानने वाला हो, दूसरा जानेगा तो जो जानेगा उसे लाभ होगा, तुझे नहीं होगा, और जो जानने में आएगा उसे भी लाभ होगा। लाभ तो क्या, वो तो त्रिकाली ध्रुव है, इसलिए वो तो लाभ अलाभ की समस्या ही नहीं है वहां, लेकिन वो ही वो है। और इसलिए कहते हैं ये दोनों मैं होना चाहिए, इनमें मैं किसी को शामिल नहीं करूंगा। जैन दर्शन सबसे बड़ा स्वार्थी दर्शन है, और स्वार्थ का अर्थ समझते हैं जैन दर्शन में क्या है, परमार्थ, उसी को परमार्थ कहते हैं और उसी को स्वार्थ कहते हैं। अब हमने परमार्थ शब्द को तो मान लिया मोक्ष, और स्वार्थ को ना मालूम क्या मान लिया, कि वो आदमी तो बहुत स्वार्थी है, तो सबसे बड़े स्वार्थी तो सिद्ध भगवान है, अरहंत भगवान है, त्रिकाली तो भगवान आत्मा है। क्योंकि स्वामाने क्या होता है, स्वामाने अपना आत्मा, मतलब एक देव दूसरे देव का करता ही नहीं है और कोई किसी का कर ही नहीं सकता, तो स्वा को ही करना है और स्वा का ही करना है। तो जो स्वा स्वा की बात हो, दोनों स्वा हो, वो स्वार्थ, तो उसको ही तो परमार्थ कहते हैं, उसको ही तो धर्म कहते हैं, उसको ही तो निश्चय धर्म कहते हैं, उसको ही तो मोक्ष मार्ग कहते हैं। ہے نا. یعنی جو سب سے بڑھیا چیز تھی وہ ہم نے سب سے گھٹیا بنا دی, اسے وہ آروپ کی چیز بن گئی. جو سوبھاگی کی چیز تھی اپنے یہاں کوئی سادھو بنتا ہے, دیکھا لیتا ہے, کیا کرتا ہے کہ میں آج سے کسی کی فکر نہیں کروں گا, یہی تو کرتا ہے. راج تو راج میں رہتا ہے, راجہ اس کا کیا کرتا ہے. آپ کی مکان ہے, سمپتی ہے, آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے تب بھی وہ تو رہے گی نا ویسی کی ویسی. کوئی دیکھے گا تم جیسا آ کر کے, کوئی اس کو بھوگے گا. جو کچھ جو نام اسے دینا ہو آپ کو, بھوگنا, دیکھنا, سنبھالنا, جو نام دینا ہو, بات سب ایک ہی ہے کہ وہ جو اس کے وکلپ میں الجھے گا. کوئی بڑی آرت کسی کا نہیں ہے. تو اب وہ جب پر میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے, ایسا سنکلپ لے کے تن کا بستر بھی چھوڑ کے نکلا ہے. یعنی ان کا بس چلتا تو تن بھی چھوڑ کے نکلتے, لیکن وہ آتم ہتیا ہے نا, وہ نہیں ہے نا, اس لیے تن رکھا ہے ان نے. لیکن تن کے پرتی بھی ایکت ممتو تو چھوڑ ہی دیا ہے. ایکت ممتو کا بھی ہم صحیح ارتھ نہیں سمجھتے ہیں, ہزاروں دفعہ سمجھانے کے بعد بھی. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ممتو مانے اس سے راگ کرنا. راگ کرنا وہ ممتو نہیں ہے, یہ تو شردھا کا دوس ہے. ایکت ممتو کرتے تو بھوکتے تو, اور راگ تو وہ چارتر موہ کا ہے. اس میں صرف اپنا پن کرنا کہ یہ میں ہوں, یہ اس کا نام ممتو ہے. تو کہتے ہیں میں ہوں, میں تو ایکت ہو گیا بس, یہ میرا ہے. اس میں ممتو میں ہوں, ایکت میرا ہے, ممتو میں اس کا کرتا ہوں کرتے تو, میں اس کا روکتا ہوں روکتے تو. اور ان چاروں کا ایک ہی ارتھ ہے, کیا مچھا پر میں ایکت ممتو کرتے تو روکتے تو. اس لیے چاہے ایکت کہو چاہے ممتو کہو, کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا. جب ان کا انترگت بھید کرنا ہے تب ہم بھید کر دیتے ہیں کہ یہ میرے میں ہے کہ میرا ہے. ایسا ہے کچھ پدارتھ اس جگت میں ایسے ہیں جن میں یہ آتما ایکت کرتا ہے, جیسے شریر, اور کچھ پدارتھ ایسے ہیں کہ جن میں یہ آتما ممتو کرتا ہے, جیسے میرے, میرا پتر, میری پتنی, میرا مکان, ہے نا. اسے یہ فرق ہے, لیکن دونوں ایک سے مچھاتے ہیں. اب ٹورنامل جی نے ایسا لگا مہاشما پرکاشک میں کچھ ٹھکانا نہیں ہے. کبھی کہتا ہے کہ پتر میرا ہے, اور کبھی کہتا ہے پتر رہے گا تو میں ہی رہوں گا. پتر کے پاس رہے گا تو میرے ہی پاس رہے گا. تو کچھ ٹھکانا نہیں ہے. میں تو نکی تو کر کے تو ہے کہ تیرا ہے, اے پتر تو ہے کہ تیرا ہے, نکی تو کر کچھ. دونوں جگہ ہپڑا ماننا چاہتا ہے, اسے میں ہوں بھی کہنا چاہتا ہے اور میرا بھی کہنا چاہتا ہے. شریر میں ایکت بدھی بھی کرتا ہے کہ یہ میں ہوں, اور پھر کبھی کہتا ہے میرا ہے. تو اس میں لکھا ہے کبھی کہتا ہے میں ہوں, کبھی کہتا ہے میرا ہے. میرے کہنے کا ارتھ یہ ہے, ان چاروں کا ایک ارتھ ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ کہیں دوسرے گھر ہمیں جانا نہیں ہے آتما کے کلیان کرنے کے لیے. کیوں کہ گیان گئے مے نج آتم آرادھ ہے, جو سویم گیان بھی ہے اور گئے بھی ہے, جانتا بھی ہے اور جاننے میں بھی آتا ہے, ایسا اپنا ہی آتما آرادھنا کرنے یوگیہ ہے. کتنا بڑا انتر ہے, دھیان دینا. یہ پنچ پرمیشٹری ہے نا مندر میں براجمان پرتما, تو بہت دور کی بات ہے. ساتھ ساتھ سدھ سلام جو براجمان سدھ بھگوان ہیں, ان کی آرادھنا سے بھی پن بند ہوگا, بند ہوگا, کرم کٹیں گے نہیں. और यदि उसमें एकत्र बुद्धि रूप आराधना करी तो मिथ्यात्व ही होगा, चाहे स्त्री को अपनी मानो और चाहे सिद्धों को अपना मानो। मिथ्यात्व नामक पाप तो दोनों में एक सा है, वो शुभ भाव होगा, वो अशुभ भाव होगा, है? थोड़ा पुण्य की जगह पाप बन जाएगा, पाप की जगह पुण्य बन जाएगा। तो ऐसा तो अनादि काल से होता आया, निगमित में भी पुण्य से पाप, पाप से पुण्य बनता रहा है। पाप बनता रहा है इसका प्रमाण तो ये है कि अनादि काल से वहां पड़ा है। यदि वो पाप नहीं बन रहा होता तो वो उदय में कहां से आता, वहां क्यों पड़ा रहता? और पुण्य भी बन रहा है, यदि पुण्य नहीं बन रहा होता तो निकलता कैसे? अब आप एक और पुण्य के बनने से निकलता तो है, अब तो कुछ ठिकाने आए, समझ में आया तर्क क्यों? कि पुण्य बनता है कि उससे संसार से हम निकले तो, निगमित की महाजेल से उससे निकले तो, क्योंकि वहां कर्मों के बंधे नहीं और कटे, ऐसा तो कुछ पुरुषार्थ होने वाला नहीं है। जो ऑटोमेटिक प्रक्रिया में पुण्य से पाप, पाप से पुण्य बंधेगा ऑटोमेटिक प्रक्रिया में, तो मान लीजिए कि वो निकल के दो इंद्री बना, तो एक इंद्री भी पाप प्रकृति है, दो इंद्री भी पाप प्रकृति है, तीन भी पाप प्रकृति है, चार भी पाप प्रकृति है, फिर तारतम्य में लगाएंगे, यानी एक इंद्री से दो इंद्री कुछ अच्छी है, अच्छी तो पुण्य के उदय से मिलती है, दो इंद्री से तीन इंद्री ठीक है, तीन इंद्री से चार इंद्री ठीक है, ऐसे करते करते सर्वार्थ सिद्धि तक जाएंगे। अब कौन कब से उसे पुण्य कहने लगेगा, कब से पाप कहने लगेगा, कोई ठिकाना नहीं है। अनियोग भी अपनी अपेक्षा से बात अलग अलग करेंगे, लेकिन मैं बोला कि एक इंद्री बार बार बन रही है, फिर वही उदय में आ रही है, फिर वही पैदा हो रहा, तो दो इंद्रियां निकल के आ गया, तो कुछ तरक्की तो की, निकला तीन इंद्री चार इंद्री आ जाता है, लट प्रपील अली आदि शरीर भयो भरी बहु पीर, लेकिन है वे सब पाप ही में इकट्ठा, एक ठोक के भाव बन ले तो पाप, निगोद से निकला है। और इसमें एक पंक्ति आती है ना, कौन अति भाग्य के उदय से सैनी पंचिंद्री था, ऐसा कुछ है ना, है? मतलब कहीं से उन्होंने एक पॉइंट को टच किया है जहां से उन्होंने पुण्य मानना शुरू किया है, वहां से तो पाप ही पाप है। लिखा है शायद मनुष्य गति ने लिखा है कि स्वर्ग में चला गया, जहां जहां से भी उन्होंने स्वर्ग में भेजा है वहां थोड़ा पुण्य के उदय की बात की है। तो अज्ञान के मैं निज आत्म आराध्य, आराध्य किसे बोलते जानते, आराधना, हम आत्मा की आराधना करना है, हम तो बस अब धर्म में ही लगे हैं। आराधना क्या है आप जानते हैं, ये शुभ पूजा भक्ति कुछ आराधना नहीं है, भले ही लिख दी आराधना अर्चना, वो नाम लिख दिए देंगे आत्म आराधना, उसमें एक पंक्ति नहीं है आत्म आराधना की, तो किताबों पर छप दिए ना, आज के अपने को बड़े आध्यात्मिक कहते हैं, बाकी तो वे हैं ही नहीं, बाकी तो ऐसा लिखते ही नहीं है, लेकिन लिखते हैं देवी अपने को, लेकिन आराधना तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को बोलते हैं। और आत्मा में ये मानना कि ये मैं हूं, उसका सही स्वरूप जानना और फिर ये मानना कि ये मैं हूं, इसका नाम श्रद्धा गुण की तरफ से आत्मा की आराधना है। फिर उसे ये जानना और ये जानना कि ये मैं हूं, ये कौन से ज्ञान गुण की तरफ से आत्माराधना है, और उसी को जानते रहना एकत्व बुद्धि पूर्वक, उसका नाम चारित्र की तरफ से आराधना है, उसका नाम सम्मान दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो ऐसी आराधना कौन कर रहा है बताओ, नहीं कुछ नहीं है आराधना, ऊपर से किताब पे लिख दो चार जितने लिख दो चार फिर अध्यात्म महल लिख देने से भी उसमें अध्यात्म थोड़ी चबकने लगेगा। आजकल तो जी अजैन लोग तो पूजा पाठ को ही अध्यात्म कहते हैं। देखो ज्ञान गे मैं निज आत्म आराध्य, आराधना का मतलब समझे तो कि हम कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे कि कैसे निर्णय करें। सम्यक दृष्टि निरंतर आराधना कर रहा है, रोटी खा रहा हो तब, लेट्रिन जा रहा हो तब, पांच नियों के विषयों में लगा हो तब। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में एकत्व किए है ना, उस वक्त छूट जाता है क्या? आपके जो करोड़ों की संपत्ति के आप मालिक हो तो आप सोते वक्त भूल जाते हो, खाते वक्त आप इसकी ये आप में से चला जाता है कि मैं करोड़पति हूं, इसका मकान का मालिक मैं हूं। बोलो लेट में जाते वक्त छूट जाता है, पांच इंद्रियों के विषय भोगते वक्त छूट जाता है। पर में एकत्र बुद्धि बनी रही तो मिथ्या आराधना चालू है, और अपने में बनी रही तो सम्यक आराधना चालू है। तो आराधना तो चालू है ही, और श्रद्धा गुण में ऐसा कभी होता ही नहीं कि किसी में भी अपनापन नहीं हो। कहां बोलो आराधना, आराधना तो चालू ही है, तो ध्यान भी 24 घंटा चालू है। एक समय को जानना वो ज्ञान है, तो लगातार जानते रहना किसी चीज को वो ध्यान है। तो आप एक एक समय को जानते हो, असंख्या समय बाद तो आपको पता चलता है ना। एक सुई चुभाए आपको सोते वक्त और फिर से चुभा के निकाल लें, तो जब चुभाई तब तो आपको पता ही नहीं चलता है, जब निकल जाती है उसके असंख्या समय बाद पता चलता है। किसी बच्चे को जब इंजेक्शन लगाते हैं तो वो नहीं समझता क्या कर रहे हैं, माँ हाथ में लिए है, माँ ऐसा हाथ पकड़े है, उसे कोई शक होता ही नहीं है। और जब उसको सुई चुभाते हैं और एकदम जल्दी से निकाल लेते हैं, लगाकर इंजेक्शन लगा के निकाल लेते हैं, उसके भी एक मिनट बाद रोता है बच्चा। जब लगी तब क्या रोया पता ही नहीं चला, जब तक पता चलता है तब तो वो लग के निकल चुकी होती है। असंख्य समय बाद तो पता चलता है बेटे को, असंख्य समय में तो उपयोग स्थिर होता है, अब हमेशा रहता है। इसलिए ये समस्या ही नहीं है श्रद्धा ज्ञान चारित्र की, सिर्फ इतना सा काम है कि अभी कहीं लगा है वहां से हटाकर अपने में लगाना है। जब ये करना पड़ेगा तो अपने और पराये में भेद करना पड़ेगा, कहाँ लगा है और कहाँ से कहाँ हटाना है। ये आराधना ये विधि है, अब उसमें तुम्हारी सारी ये विधियां कहाँ आती हैं? कि पहले विनय पाठ बोलो, फिर बाद में अत्रा अत्रा ये बोलो, फिर ये बोलो, तो ये क्या करे। सब वैष्णव में जाके देखो तो वही लिखा है, यहां भी लिखा पवित्र पवित्र होगा, वहां भी लिखा है अपवित्र पवित्र होगा, बिल्कुल हूबहू शब्द। ये अपने भी परमात्म किसी ब्राह्मण पंडित नहीं बनाए हैं, जिसने पहले वो बनाए होंगे ना तो जैनियों ने कह दिया हम तो तुम्हारे नहीं करेंगे, मंगलम भगवान विष्णु हम तो नहीं मानेंगे, कि तुम्हारा बना देते हैं। तो मंगलम भगवान वीरो जैनियों का हो गया कि नहीं नहीं हम तो नहीं मानते हैं, ये तुम कैसे पंडित थे जैन, जैन जैनों की नकल उन्होंने की होगी, किसी ने किसी की है ना। तो बात तो दोनों की एक सी है, बस विष्णु की जगह वीरो लिखा है। ये जरूरत थी रमेश, अपन ने 1008 नाम भगवान के गिनाए, उसने विष्णु भी तो लिखा है, उसी से भी काम चलता था। क्या कह रहा हूं समझ में आ रही तुम्हारी क्या? नहीं, अपने 1000 नामों में ये भी है। भक्तांबर में बोलते हो ना, तुम संकरोसि भवन त्रय संकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्, लिखा है अपने यहां बुद्धस्तमेव विवचात ते बुद्धि बोधात। हे भगवान, आप ही बुद्ध हो। क्यों बोलो, क्यों? तुम्हारा नहीं चाहिए, मान तुमने का जवाब चाहिए। अब तो शास्त्री हो गए, फाइनल जाने वाले, डिग्री लेने वाले, इतनी इतनी संस्कृत नहीं क्या कर सकती। बुद्धि बोधात, विबुधार चित बुद्धि बोधात, लगाओ माथा। विबुध माने होता है विद्वान, इंद्र, देवता, बड़े लोग, और विबुधार चित उनके द्वारा पूजित हैं, उनके द्वारा जो पूज्य हैं, विबुधार चित बुद्धि, ऐसी बुद्धि जिनके है, जिनमें ऐसी बुद्धि है कि देवता लोग भी जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे आप हो, और जिनकी देवता लोग पूजा करते हैं उन्हें बुद्ध कहते हैं, इसलिए आप ही बुद्ध हो। बस उन्होंने परिभाषा अपनी तरफ से लगा दी, उन्होंने बुद्ध नाम से तो ऐतराज नहीं किया। बुद्धस्तमेव, बुद्ध ही तुम हो, विबुधार चित बुद्धि बोधात, ठीक है। और तुम शंकर हो, शिव भुवनात्रय शंकर, तुम ही शंकर भगवान हो। कि भाई जटा वाले, के सुनो सुनो, भुवनात्रय, भुवनात्रय माने तीन लोक में, शंकरत्वात्, सम माने शांति, सम माने सुख, सम माने समता, करने वाले हो, तीन लोग में शांति कर देते हो, इसलिए तुम्हें शंकर हो। और धाता सी, तुम्हें विधाता हो, विधाता माने ब्रह्मा जी, कैसे हो कि दुनिया बनाई है तुमने, क्या है बोलो। धाता सी धीर शिव मार्ग विधेर विधान, मुक्ति के मार्ग की विधि का विधान किया है। अब विधान से मतलब समझना है, क्या होता है विधान? विस्तार से मोक्ष मार्ग की विधि बताई है। विधेर विधानात, विधान माने विस्तार है, पूजन विधान माने पूजा, हमने विधान माने विस्तार से किया है। हमने सम्मेश शिखर पूजन विधान, पूजन माने हमने सम्मेश शिखर की सीधी एक पूजन कर ली, हमने शिखर पर्वत की, तो फिर पूजा हो गई, और फिर एक एक टोंक का, और फिर कितने दूर है, कहाँ है, क्या है, डिटेल सहित जो हमने की, तो विधान हो गया। अब हम समझते हैं छोटी होती है वो पूजा होती है, और जो बड़ा होता है वो विधान होता है। 150 पेज का हुआ तो विधान हो गया, और नहीं तो पूजा हो गई। हमारी हिंदी साहित्य में भी ऐसा झगड़ा चलता है, छोटी हुई तो कहानी हो गई, और बड़ी कहानी हुई तो उपन्यास हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी उपन्यास 20 पेज का भी हो सकता है, और कभी कहानी 100 पेज की हो सकती है। जैसे चंद्रधर गुलेरी शर्मा की कहानी है, कौन उसने कहा था नहीं लेना, एक है 60-70 पेज की कहानी, क्या है, सुख सुखी जीवन, वो कहानी है 70-80 पेज की, उपन्यास क्यों नहीं है? कहानी और उपन्यास में चैप्टर बदलते हैं, उपन्यास में चैप्टर बदलते हैं, जैसे सत्य की खोज है, एक आया, फिर दूसरे चैप्टर में दूसरी बात चली, फिर तीसरे में तीसरी बात चली, फिर वो जाके आगे मिल जाती है, जैसे वो शील कथा वगैरह में आता है, यहाँ की कथा यहाँ ही रहो, आगे और भयो सो सुनो, आता नहीं, यहाँ की कहानी यहीं छोड़ो, अब उज्जैनी की सुनो, फिर उज्जैनी में क्या हुआ, फिर यहाँ की यहीं छोड़ो, अब जाके हस्तिनापुर की सुनो, कि भाई मुनि महाराज हस्तिनापुर से उज्जैनी पहुंचे, फिर ये हुआ, आप समझे ना। तो ये जगह जगह बदलती है, कहानियां बदलती हैं, प्रसंग बदलते हैं, ऐसे और बहुत से नियम हैं, तो वो उपन्यास कहलाता है। माने वो कहानियों की कहानी, लेकिन लंबी कहानी है और एक बस एक घटना, ओनली वन घटना, जीवन की एक घटना का वर्णन हो वो कहानी, और अनेक घटनाओं जिसमें बताई जाए वो उपन्यास। मूलभूत अंतर ही है। अब सुखी जीवन नाम की जो कहानी है, वो कहानी क्यों रखी है मालूम उसमें है क्या? सिर्फ इतनी सी बात है कि एक व्यक्ति है लेखक, उसने एक किताब लिखी कि सुखी जीवन, कि किसी आदमी को जीवन में सुखी रहना है, सुखी होकर के जीना है, अपने जीवन को सुखी बनाना है, तो कैसे रहना चाहिए तो उसका जीवन सुखी होगा। क्या ये सुखी जीवन कहानी, कि सुखी जीवन कैसे बनता है, क्या है ये बताएगा वो। और उसने उस सुखी जीवन कहानी का जो लेखक है वो ही वहां हीरो है। क्या है? सुखी जीवन किताब का जो लेखक है और उसका जीवन कितना सुखी है उसका वर्णन है, ये कितना दुखी, वो अत्यंत दुखी है, वो सुखी जीवन वो बताता है कि सुखी जीवन जीना है तो पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चों के साथ ऐसा करना चाहिए, पहाड़ियों के पड़ोसियों के साथ ऐसा करना चाहिए, और वो उसकी पत्नी से ज्यादा दुखी है। क्यों? कि वो इसमें लग रहा है ना, तो पत्नी के जैसा जैसा उसने खुद बताया कि पत्नी के साथ ऐसा करना चाहिए, वो करे ही नहीं पाते। ऐसा बुद्ध का आदमी कैसे कर सकता है कि उसके साथ बर्तन घिसने लग जाए जाकर। थोड़ा कभी कभी ऐसा लिखते हैं कि रसोई में जाना चाहिए पति को, उसके साथ थोड़ी थोड़ी रोटी दो बेल लेना चाहिए, तो फिर प्रेम बढ़ता है। अब हमको ये समय सार प्रोजन सार पढ़कर चुड़ा करके रोटी बिलवाता है, हम तो उसके दूसरी तरफ देख नहीं सकते क्या है, तो बेली जाती कैसे बेली जाती, तो हमारा जीवन कैसे सुखी होएगा। मतलब वो कहानी में बता रहा है, लेकिन वो कहानी भी जयपुर में लिखी गई, उसका लेखक जो था वो भी जयपुर में पैदा हुआ। क्या नाम था? चंद्रधर गुलेरी शर्मा, जिसने उसने कहा था कहानी लिखी है। अरे ये तो कहा है, कहा साहित्य है, एक दफे पढ़ लिया तो जीवन भर याद रहना चाहिए ना। ये थोड़ी रोजीना रोजीना कहा रहते हैं उस कहानी को। कोई चीज एक दफे पढ़ ली और पढ़नी चाहिए, पढ़ने की आदत डलना चाहिए, तब भी एक ही दफे भी नहीं पढ़ोगे तो क्या रहेगा तुम्हारे हाथ? जो कोई कोर्स में थोड़ी होती है, ये कोई गुरुजी थोड़ी पढ़ाते हैं, ये तो अपने सेल्फ स्टडी में ही होती है। वो जितना पढ़ेगा, जहां से पढ़ेगा, याद रखेगा, क्या करेगा? देखो, ज्ञान गे मैं निज आत्म आराध्य है, ज्ञान क्या है? अब क्या देखो, ज्ञान गे मैं निज आत्म आराध्य का अर्थ तो हो गया ना। आराध्य का मतलब श्रद्धा ज्ञान चारित्र का विषय वही है, सम्य दर्शन के लिए इस पंक्ति से होता है, सम्य ज्ञान और सम्य चारित्र भी, मोक्ष भी चला जाता है अकेली इस पंक्ति के भरोसे। और ज्ञान गे मैं आत्म ही प्रतिपाद्य है। अब कहते ये तो अपनी आराधना करें, अकेले कोठरी में बैठ के और आत्मा का ध्यान करें, क्यों ज्ञान करें, तो फिर बताएं क्या, रोचन क्या करें, प्रतिपादन क्या करें? अपन ने चलाया था ना शिविर में, शिविर था क्या था, विधान विधान चलता था, उसमें अपन ने विषय चलाए थे ना, भगवान महावीर की वाणी का प्रतिपादन, केंद्र बिंदु प्रतिपाद्य, प्रतिपादन शैली, वो सब चीजें बताई थी ना। तो उसमें से एक चीज चर्चा की है कि जिनवाणी की में प्रतिपाद्य क्या है, कि अपना आत्मा और कौन क्या है, और कैसा है वो? वो ज्ञान भी है, अज्ञेय भी है। जानता भी वही है और जानने में भी वही आता है, और जानने वाले के रूप में जाना जाता है। माने वो ज्ञेय बनता है तो कैसा ज्ञेय बनता है? कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, वो जानने वाले के रूप में जाना जाता है, वही एक आत्मा है। आराध्य भी वही है, प्रतिपाद्य भी वही है। ज्ञान के मैं एक आत्मा सार है, और सारभूत आत्मा जो वो कौन है? ज्ञान के मैं आत्मा है। भगवान महावीर की वाणी का प्रतिपादन केंद्र बिंदु कौन है? वो भगवान आत्मा जो ज्ञान के मैं है और निज रूप है। एकमात्र एक ही चीज खड़ी है और हम उसे नहीं खड़ा होने देते हैं। इतनी चीजें खड़ी हो जाती हैं कि उस आत्मा को आत्मा फात्मा में उलझा दिया है, कोई और दूसरी बातें नहीं हो सकती हैं। हमारे विद्यार्थी, हमारे मैनेज व्यवस्थापक लोग हमको ये बताते हैं कि दादा ये आत्मा आत्मा बोल, तब इसमें तो विधान में तो थोड़ी और बातें करा। मैंने कहा बेटा तुम्हारी समझ में आता कि नहीं, तुम समझ में बैठते कि नहीं, कि तुम्हें समझना कि नहीं, कि दूसरों को समझाना समझवाना है। ये निर्णय तो हमको ही करने दो कि क्या समझाना है, किसको समझाना है। उस सब्जेक्ट के बारे में तुम हमसे डिस्कस मत करो, सब्जेक्ट हम पे ही छोड़ दो। कहना हो तो अपना भाव कह दो, लेकिन ये अपेक्षा मत करो कि हमारी ये बात हम मानेंगे। समझाने लायक क्या है इस जगत में? हमने सारी जिंदगी में ये निर्णय किया और तुम हो गए थे इसकी चर्चा मत करो। अरे हम तो इसकी चर्चा करने के लिए चर्चा करते हैं, नहीं तो हमको बोलने का ही भाव नहीं है। ये समझाने के लिए ही ये बात करते हैं कि नहीं नहीं जाना है, पहले के दो चार दिन आने दो, सुनने दो, फिर जब वो आपका अच्छा लगेगा तो फिर वो भी सुनेंगे, इसलिए फिर बाद में ऐसा हमको थोड़ा सा तरका के रास्ता बदलवा देते हैं, फिर वो बाद का दिन कभी आता ही नहीं। मैं कहते हैं हमारा दिन आएगा क्या? तुम्हारा तो हम नहीं कहते, आएगा ही आएगा, लेकिन हमारा आएगा बाद का दिन बताने का हमें तो भरोसा नहीं है, इसलिए हम तो अभी बताएंगे। क्या ज्ञान के मैं एक आत्मा सार, सार ही रोचन सार है, ऐसा भी लिख सकते थे। थोड़ा सा वहां समझना पड़ता, बड़ी ही की छोटी करी ना, तो इसलिए उसे मिला दिए। अकेली लिखी नहीं जाती है, छोटी बहुत कम लिखी जाती है इसलिए। लेकिन सार ही, अब एक दफे इस पंक्ति को सार अलग और बड़ी ही अलग, ऐसा बोलो कैसा लगता है? अरे यहीं से नहीं, तुम ऊपर की दो लाइन से बोलो और शांति से सही तरीके से बोलो, जबरदस्ती ही पे जोर मत दो। सार रुको, फिर ही, फिर सार बोलो, जो ये बदला है ना छोटी की, एक ही नहीं बोलो, ये बड़ी ही की बोलो, अलग काट के बोलो, ये कह रहा हूँ। हाँ बोलो पढ़ो, मैं ये देखना चाहता हूँ कि छंद कितना भंग होता है। ऐसे बोलने से छंद कह रहा अडिल छंद है, अडिल छंद रहना चाहिए ना। अडिल छंद समझते हो? जो अपने पुरानी देवशास्त्र पूजन है उसका जो शुरू शुरू में वो है ना चढ़ाने का, प्रथम में देव अरहन सिरदान तजू अहंत मो किवर पान तजू है ना। सब ठीक है, अब बोलो बोलो रमेश
लोकालोक प्रकाशित
चल चल बोलो
ज्ञान ज्ञान
अब थोड़ा मेरा कोई दिलावला तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ तुम देखना है ना। ज्ञान गे मैं निज आत्म आराध्य ज्ञान गे मैं आत्म ही प्रतिपाद्य ज्ञान गे मैं एक आत्मा सार जिन विवचन का सार ही प्रवचन सार जिन प्रवचन का सार ही प्रवचन सार सार पे रखो वही तो तोड़ना है जो तुमने मिला दिया है। यदि वो बड़ी ही होती तो अलग होती ना। जिन्हें प्रवचन का सार ही प्रवचन सार अब लोकालोक प्रकाश थे जिन्हें लोकालोक प्रकाशित हो रहे हैं माने वो लोकालोक को जानने नहीं गए थे। लोकालोक अपने स्वभाव के कारण क्योंकि उनमें गेयत्व नाम का धर्म है प्रमेयत्व नाम का धर्म है इसकी वजह से उनके ज्ञान में अपने आप झलकते हैं। वो झलकना सब इसके लिए बोलते हैं माने वो कर्तृत्व के निषेध के लिए और वो समझते हैं कि नहीं जानते ही नहीं जानते हैं। वो लिखा ना क्लियर कि वो जानते नहीं तो जानने में आते हैं जनाई जाए उसमें जनाई जाए से इसमें जानना नहीं होता है। अरे जानने रूप क्रिया का करता तो वहां वो ही आत्मा रहा है ऐसा जनाई जाए से कहने से कोई बदला नहीं है समझे ना। मतलब सिर्फ ये कि उन्हें जानने का विकल्प नहीं है और हम लोगों को जानने का विकल्प होता है। हम लोगों को विकल्प में उलझने से मना किया जाता है जानने में आने से मना नहीं किया जाता। वो उसे कोई जानना कहते हैं जानने में अलग से और कुछ नहीं होता है समझिए ना। यानी जिस बात के निषेध के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है उतना ही अर्थ हमको लेना चाहिए। उससे ज्यादा अर्थ लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा है? लोकालोक जिनके ज्ञान में झल जाता है। अभी देखिए संबंध भजे का बोलो मंगलाचरण काय को व्यायाम करी है सालोका नाम त्रिलोका नाम। अब चार ही लोग तीन ही लोग कहना है पूरे तो पहले हटा के त्रिलोक कह दिया और फिर अलोका का सहित भाषा कैसी भाषा है मानो क्या लोका सालोका नाम त्रिलोका नाम सा माने सहित है ना। अलोका काश भी जानते हैं और तीन लोग भी जानते हैं तो तीन लोग जानते हैं कहते हैं अलोका काश जानते अरे आकाश जानते हैं इतने से भी काम चलता था। अब इसको उन्होंने कितना लंबा लिया सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाए थे सिर्फ उसको एक्टिव वॉयस का पैसिव वॉयस किया है कर्तृवाच का कर्मवाच बनाया है। और वो क्यों कब बनाया जाता है कि जब जो करता है वहां उसे अपराधी नहीं बनाना है पर काम हो गया उसने काम उसके द्वारा ऐसा काम हो गया। राम के द्वारा रावण मारा गया मैंने इसमें राम जरा कम अपराधी देखते हैं और राम ने मारा एकदम सीधे हत्यारे देखते हैं है? क्यों मारा, उसकी पत्नी को ले गए थे और वो उचित है या अनुचित है, ये तो बाद की बातें हैं। इतनी बात तो नक्की है ना कि मारने की क्रिया का कर्ता राम है और मरने की क्रिया का क्या कर्म रावण है। अब वो परिस्थिति तो बदल नहीं सकते। इतनी बड़ी रामायण लिखकर हम रामायण भी लिख सकते हैं और फिर तो हमारे लिए कहेंगे कि वो इतना दुष्ट था राम ने उसे मारा, वो बेचारा इतना सज्जन था, इतने दिनों तक राज चलाया, लंका की हालत तो देखो कैसी चमका दी है, बढ़िया बढ़िया बगीचे थे, ये थे ये थे, वर्णन करो खूब अच्छा था ही ना। तीन लोक का राजधानी थी ये तीन खंड की है ना, वो बढ़िया से बढ़िया थी ना, सारी व्यवस्था भी ये बन थी है? आप जानते हैं जब राम ने रावण को मारा, लक्ष्मण ने मारा, तब लक्ष्मण की उम्र क्या थी और रावण की उम्र क्या थी है अंदाज कहीं देखा नहीं, मैं तथ्य नहीं पूछ रहा हूं, पक्की उम्र भी नहीं पूछ रहा हूं, अंदाजन। देखो राम के बाप के बाप के बाप के बाप जब पैदा भए थे तब रावण राजा बना था। अब समझ जाए मैं क्या कह रहा हूं, राम के दशरथ, फिर दशरथ के क्या अनंत रथ थे, तब ये सब उनके ही राज्य में थे। रावण था आदि चक्रवर्ती और जो उसके मुकुटबद्ध राजा थे 32,000 होते ना, 32,000 18,000 जो भी 16,000 वो थे। ये तीन चार पीढ़ियों का फर्क है, जब रावण को किसी ज्योतिषी ने बताया था कि तेरी मौत दशरथ के बेटे और जनक की पुत्री से द्वारा होगी, तब जनक और दशरथ का भी अस्तित्व नहीं था। आया ना, तब तो वो रावण राजा बनके और तीन खंड का राज भोग के हजारों वर्ष बिता चुका था है? चलो फिर अपन प्रथमान योग में उलझ जाएंगे। ज्ञान गेयमय एक आत्मा सार है, ये तो हो गया था ना, वो ज्ञान गेय आत्मा और जंत्र चंद का सार ही, और लोकालोक प्रकाशित जिनके ज्ञान में है? जिनके ज्ञान में लोकालोक आके प्रकाशित हो रहे, वे कहीं नहीं जा रहे, उन्हें कोई काम नहीं किया, उन्हें कोई काम उनकी ड्यूटी नहीं है, उन्हें जानने का विकल्प भी नहीं है उनके में, किंतु आत्मा एक है जिनके ध्यान में। ज्ञान में तो तीन लोकालोक अलोकाकाश भी है और ध्यान में अकेला आत्मा। अभी क्या है, श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण और चारित्र गुण, तीनों गुणों की से भगवान आत्मा का संबंध है। ध्यान चारित्र गुण की पर्याय है, श्रद्धान श्रद्धा गुण की पर्याय है और ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है। अब ज्ञान तो है स्वपर प्रकाशक और श्रद्धा सर्व स्व प्रकाशक है, स्वागत, और चारित्र भी स्वागत, इन्हें पर से मतलब नहीं है। ये ध्यान भी जिसका करते हैं ये निज मान के करते हैं, ध्यान भी जिसका करते हैं और श्रद्धा भी करते हैं अपनापन की, तो अपनापन तो कर ही रहे, मैंने अपना मान के ही कर रहे हैं ना, मन पर नाम की कोई चीज ही नहीं है वहां, और ज्ञान में स्व और पर दोनों हैं, वे हट भी नहीं सकती। मैं कहूं मैं अकेला एक को जानूंगा दूसरे को नहीं जानूंगा, तीन लोग और तीन काल में हो नहीं सकता, ना नरक में ना निबोध में ना मोक्ष में, वो तो बहुत स्थूल कथन है कि उन्हें पर से उपयोग हटा के अपने पर लगा दिया और पर उसको नहीं जाना, उस पर जानना होता रहता है क्योंकि ज्ञान गुण सुपर प्रकाशक है, वो उस समय उसका पर प्रकाशक बना बंद नहीं हो सकता, और अभी भी अनादिकाल से आज तक अपन कहते हैं आत्मा को जाना नहीं, जाना नहीं आत्मा। आत्मा एक सेकंड भी बिना जाने में आए बिना नहीं रहता। अब आता ना 16-17वीं का था समय सार की, क्या है आबाल गोपाल जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। एक समय भी जाने तो आत्मा के ज्ञान का नाम मोक्ष है। केवल ज्ञान होता है तो हो जाता पदार्थों केवल ज्ञान अभी तक, तो ये ऐसे जानने का नहीं। अब आत्मज्ञान से होता है और दूसरा रास्ता नहीं है और आत्मा जा नहीं रहा है तो फिर बाकी क्या रह गया कि ऐसे नहीं तो कैसे तुम बताओ। जो कितना बारीक और कितना सरल बात है कि उसने सिर्फ ये नहीं जाना कि ये मैं हूं बस, वो जान तो रहा अनाधिकार से। अब इतना ही बाकी है, इतना हुआ वो खटाखट मोक्ष मार्ग शुरू। प्रमाण समझ जाए ना, यानी कितना राय की ओट में पहाड़ है, चलने को कुछ नहीं है, एक कदम नहीं है और तू दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। तीन उपवास से नहीं हुआ तो 9 कर दो, 9 से नहीं होगा तो हम 27 कर देंगे। लेकिन भाई रही साहब इससे होता होता तो हो जाता, वो तो अंतर मुहूर्त का लिखा है कि अंतर मुहूर्त तक में असली उपवास हो गए तो केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन तुम उपवास बढ़ाया जा रहा है, उपवास बढ़ाया जा रहा है, देखते ही नहीं है कि भाई जब कोई काम किसी काम से नहीं हो रहा है तो फिर उपाय बदलना चाहिए ना। ये तो उपाय नहीं बदलता, मात्रा बदलता है। अपन गए पुलिस वाले के पास कि ये काम कर दे, 500 रुपया क्या बोल रहे बाबू जी, अभी मैं अंदर बंद कर दूंगा, मुझे घूस देने की कोशिश कर रहे। अरे सुबह से शाम तक तो खाता है और हम कह रहे घूस देने की कोशिश कर रहे। अब तुम्हें क्या पता कि सामने ऑफिसर खड़ा है। अब तुम और कहो नहीं नहीं बाबू जी रख लो, पर जेब में रख लो। क्या होगा, अरे तुम जो उपाय बढ़ा रहे हो वो उपाय से तो और फंसोगे, वो उपाय नहीं है, है? तुम उपवास बढ़ाए जा रहे हो, तुम पूजने बढ़ाए जा रहे हो, 3 की 6, 6 की 9, तुम नवोकारमन का जाप बढ़ाए जा रहे हो। क्यों एक दफे 3 दफे भगदम्बर का पाठ बढ़ाए जा रहे हो। अरे भाई मार्ग बदलना है, कौन सा है ये है, वो तुम्हें सुनना ही नहीं है, बदलना तो बहुत दूर की बात है। लोकालोक प्रकाशित जिनके ज्ञान में,
किंतु आत्मा एक है के ध्यान में, जिनका एक हाल है, जिनके ध्वनि का सारे प्रदंसार,
जिनकी दिव्य ध्वनि का सारे प्रदंसार शास्त्र है, ये उनकी बात चल रही है। उस दिव्य ध्वनि में आई हुई बात चल रही है, साथ में प्रवचन सार क्या है। ये प्रवचन सार अनुसूचन के पहले मंगलाचरण करने में ये प्रवचन सार माने क्या करने जा रहा हूं मैं, क्या किनकी किनकी दिव्य ध्वनि का सार है, किनने जो बोला है उसका सार बोल रहे हो। सार तो किसी चीज का होता है, प्रवचन सार लिखा ना है तो ये तो किसी चीज का होना चाहिए कि प्रवचन का है, तो प्रवचन क्या है, आम का फल है क्या है, काय का है, जीवन इसका रस है, इसका रस है, तो ये क्या का है सार, कि दिव्य ध्वनि का सार है, कि दिव्य ध्वनि क्या है, कि जिसमें ये बताया गया है कि एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन, उसका नाम सम्यक दर्शन, उसको जानना उसका नाम सम्यक ज्ञान, उसको लगातार जानते रहना उसका नाम ध्यान चारित्र, और ये मुक्ति का मार्ग है। ये उस दिव्य ध्वनि का सार ये प्रवचन सार नामक ग्रंथ है। ये प्रवचन सार ग्रंथ का अपन ने परिचय दिया है। देखो अब अगली बात आगे कल करेंगे, अभी तो आज का समय हो गया। एक दफे दोनों छंद एकदम शांति से पढ़ लो बिल्कुल निरापद तरीके से।
Yeah.
उसका क्या करना है वो कल बात करेंगे।